ओम शांति। सर्वप्रथम आज शिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सभी ने अमृत बेले से लेकर अव्यक्त पालना का आनंद लिया। दोनों दादियों से मिलकर बचपन का अनुभव किया और आज मुझे भी वो अपना बचपन, जब एक छोटी सी बच्ची 7 वर्ष की थी और अपनी माँ जगत अम्बा की उंगली पकड़कर मैंने इस यज्ञ में प्रवेश लिया और सबसे बड़ी विशेषता ये कि माँ स्वयं मेरे लौकिक गांव में जाकर मुझे लेकर के आई। इससे बड़ा सौभाग्य और किसका होगा जिसे स्वयं माँ जगत अम्बा सरस्वती चुन करके लाई हो। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। जब पहली बार मैं मम्मा से मिली और मम्मा की गोद मिली, वो आनंद भर में छोटी थी लेकिन आज तक वो अलौकिक प्यार, अलौकिक पालना, माँ का अलौकिक स्नेह भरा हाथ, वरदानी हाथ आज तक भी शक्ति प्रदान करता है। थोड़ा सा और बड़ी हुई, साकार बाबा से कानपुर में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 62 में बाबा से पहली बार कानपुर में मिली जब मैं 9 वर्ष की थी। बाबा जब कानपुर में आए तो मैं आपको एक आश्चर्यजनक घटना सुना रही हूँ। छोटी होने के कारण बड़ों बड़ों के बीच में तो छिप जाती, तो किसी भाई ने मुझे गोद में उठाकर ऐसे ऊंचे चबूतरे पर खड़ा कर दिया और उस चबूतरे पर खड़े खड़े मैं एक दिव्य नज़ारा देख रही थी कि जैसे लगभग यहाँ से 7 नंबर गेट इतनी दूरी पर बाबा ने जैसे ही गेट के अंदर प्रवेश किया, चारों ओर भाई बहनों का झुंड था, लाइन लगी हुई थी बाबा के स्वागत में और बाबा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजारों सूर्यों से तेजों में ब्रह्मा बाबा का चेहरा और उसका प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा है और मैं तो भाव विभोर थी, मुझे सुध बुध नहीं कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, क्या कर रही हूँ। जैसे जैसे बाबा पास आते गए, बाबा पास से होकर के ऐसे अंदर गए, मैं सुध बुध खोई अकेली वहां खड़ी हुई थी, किसी ने आकर मुझे नीचे उतार दिया। मैं नीचे उतर करके कहाँ चली गई मुझे खुद नहीं मालूम है। काफी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने पाया कि बाबा तो कमरे में हैं और मैं बाहर खड़ी हुई हूं। सुबह का टाइम हुआ, रात को तो ऐसे ही बीत गया लेकिन सुबह का टाइम बाबा स्वयं साकार बाबा मुरली चलाने के लिए हॉल में प्रवेश किया। दिसंबर का मास था, सर्दी के दिन थे, सभी भाई बहनों के बीच में मुझे भी एक शॉल पहना करके ऐसे बिठा दिया गया। मैं भी बाबा की मुरली सुन रही थी और भाव विभोर हो रही थी, बाबा को बस देख रही थी। मुरली कितनी समझ में आती उस उम्र में तो ये आप स्वयं समझ सकते हैं, लेकिन एक भाव विभोरता, वो एक एहसास अंदर में ऐसा हो रहा था जो अंदर गुदगुदा रहा था, और आज तक वो गुदगुदाहट स्मृति में आती है। बाबा ने मुरली पूरी करके स्वयं बाबा उठे, बाबा ने टोली का डिब्बा अपने हाथ में लिया और एक एक बच्चे के पास जा करके अपने हाथ से दृष्टि देते हुए बाबा ने एक एक बच्चे को टोली खिलाई। उसी सभा के बीच में मैं भी बैठी हुई थी, मैंने भी अपना हाथ ऐसे निकाल कर बाबा से दृष्टि लेते हुए टोली लेने का प्रयास किया, लेकिन बाबा ने दृष्टि इतना प्यार से दी, मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके शॉल के अंदर कर दिया। क्यों किया होगा ये आप समझ गए होंगे, समझ गए क्यों किया? मैं तो नहीं समझ पाई उस टाइम पर कि बाबा ने मेरा हाथ अंदर क्यों किया, टोली क्यों नहीं दी, ये कुछ कॉन्शियस में भी नहीं आया। लेकिन बाबा ने मेरा ये हाथ अंदर से निकाला और बड़े प्यार से बाबा ने कहा, बच्ची इस हाथ में नहीं, इस हाथ में लेते हम। सोचिए बाबा कितना ध्यान देते थे बच्चों पर भी, कि हाथ तो कोई उल्टे हाथ में ले ले, बड़े भी ले लेते हैं देने वाले दे देते हैं, छोटे भी ले लेते हैं दे देते हैं, लेकिन बाबा ने वो संस्कार बचपन में ही डाला कि बच्चे लेफ्ट हैंड में नहीं राइट हैंड में टोली लेते हैं, और बड़े प्यार से टोली देकर मेरा हाथ बंद करके अंदर किया और सिर पर इतना प्यार भरा हाथ फेरा कि आज तक रोमांच, वो इस स्मृति आते ही आज तक वो रोमांच खड़े हो जाते हैं। उस समय पढ़ाई पढ़ रही थी, दूसरी तीसरी क्लास में थी, लेकिन लौकिक पिताजी मेरे से बाबा को पत्र लिखवाया करते थे, खुद लिखते थे और मेरे को भी लिखाया करते थे कि तुम भी बाबा को पत्र लिखो। क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, तो वो खुद उंगली पकड़ करके, हाथ पकड़ करके सिखाते थे कि ऐसे ऐसे बाबा को लिखो। और जब भी मैंने साकार बाबा को मधुबन में पत्र लिखा, बाबा ने मेरे पत्र का हमेशा जवाब दिया। आज भी मेरे पास वो निशानियां, दो तीन पत्र मेरे पास आज भी हैं। जब मैं उन पत्रों को देखती हूं तो पत्रों को देखने से वो शक्ति हमें आज भी प्राप्त होती है। तो कितना प्यार बाबा का साकार में हम सभी बच्चों से था। उसके बाद बाबा तो अव्यक्त हो गए, लेकिन मुझे मधुबन में अव्यक्त बाबा की पालना लेने का बहुत सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं उस समय 15 वर्ष की थी जब मैं मधुबन में आई, और अव्यक्त बाप दादा के पालना का बहुत आनंद लिया। 3-4 वर्ष मधुबन में रहकर बाबा के लिए भोजन बनाना, बाबा के लिए टोली बनाना, बाबा को भोग लगाना, और दीदी दादी के साथ बैठ करके बाबा को, अव्यक्त बाप दादा को अपने हाथों से खिलाना, कितना बड़ा सौभाग्य है मुझात्मा का। हर एक का अपना अपना पार्ट होता है, इतना तो थोड़ा सा रहता है कि साकार में बाबा किसे मिली, मम्मा से जन्म लिया, 2 बार मम्मा से मिली, लेकिन उस समय मधुबन में आने का शायद मेरा पार्ट साकार के होते नहीं था। अव्यक्त होते ही मैं बाबा के घर में मधुबन में आ गई, और जब मैं मधुबन में आ गई तो आपको एक वंडरफुल बात बताती हूँ कि उस समय 3 मास का एक पत्र लिखवाया जाता था माता पिता से, जो बच्चे वहाँ रहते थे मधुबन में। तो हमारे निर्वैर भाई जी ने, पिताजी आए हुए थे, तो कहा कि अपनी बच्ची को आप मधुबन में रखना चाहते हो तो 3 मास का एक पत्र लिख करके दो कि मैं अपनी खुशी से अपनी बच्ची को 3 मास के लिए मधुबन में सेवार्थ छोड़ रहा हूं। पिताजी को तो बहुत अंदर से इच्छा रहती थी कि मैं कैसे भी करके बाबा की ही बन करके रहूं, और वही संस्कार उन्होंने दिए। और उन्हीं संस्कारों के आधार से जब मैं मधुबन में रही तो तो तीन वर्ष तीन मास का जो पत्र था वो जब अभी तक भी वो पत्र काम कर रहा है 70 में पत्र लिखा था पिताजी ने और वो पत्र अभी तक भी काम कर रहा है। तीन मास का पत्र कितने वर्ष हो गए, 50 वर्ष से ऊपर हो गया। कहने का मतलब बाबा हम बच्चों को कहाँ कहाँ से चुनता है कैसे अपना बनाता है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा, ऐसा स्थान है जहां से बाबा ने हम लोगों को चुना, कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उस समय तो वहां पर आने जाने के साधन भी बहुत कम थे, कच्ची सड़कें थीं जहां पर मम्मा स्वयं गई थी और एक पूरी बस भर करके, थोड़े बहुत नहीं, मम्मा के साथ हमारे इस यज्ञ की पुरानी दादियां 35 दादियां उस गांव में गई थीं और वहां पर 3 दिन, एक दिन जाने का, एक दिन रुकने का और तीसरे दिन वहां से वापस आए थे। तो बाबा ने किस कोने से, कहते ना कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई, वो भाग्यशाली आत्माएं जिन्हें भगवान ढूंढता है। तो मैं तो अपने को वो समझती हूं कि मैं वो आत्मा जिसको भगवान ने गांव में, बिल्कुल छोटा सा गांव, वहां से ढूंढ करके निकाला संसार में। और उस समय पहली बार जब पिताजी ने पत्र लिखा बाबा को, तो बाबा ने उसका जो जवाब दिया, जो वहां बहन जी थी वो पत्र लेकर के आई, किन्हीं कारणों से वो नहीं पिताजी आ पाए, और जब पत्र का जवाब बाबा ने दिया तो वहां के कई भाई बहनों ने पत्र भेजे थे बाबा को, बाबा ने सबके नाम सहित याद प्यार दिए, एक एक बच्चे के नाम सहित, सब आपस में अपना अपना नाम सुन सुन करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे और पिताजी की तरफ देख रहे थे कि अभी तक इनका नाम तो आया ही नहीं। आखिरी लाइन में बाबा ने एक शब्द लिखा था, बच्चे गुरु प्रसाद, यदि प्रसाद मिला है तो तुम्हें मिला है। उस समय तो यह बात नहीं समझ में आई कि बाबा ने क्यों ऐसा लिखा, हरेक ने यही पूछा भाई तुमने क्या भेजा था ऐसा जो बाबा ने यह लिखा है। पिताजी ने तो अपनी साधारण सी बात कह दी, भाई मेरे पास था ही क्या जो मैं भेजता, सुदामा के माफिक 5 रुपया 5 किलो चावल भेजे थे बस, और कुछ नहीं था हमारे पास, तो चावल मुट्ठी का गायन। प्रैक्टिकल में बाबा ने वो दिखाया। अगली वर्ष जब पिताजी मधुबन में आए और अब साकार बाबा अपने हाथों से गुरुवार के दिन प्रसाद दे रहे थे, तो जैसे मेरे साथ हुआ था कि बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के अंदर किया था और पिताजी को प्रसाद ऐसे देने के साथ ही प्रसाद वापस ले लिया और दृष्टि देते हुए पूछा, बच्चे प्रसाद मिल गया? उनके मुख से यही निकला, जी बाबा मिल गया। फिर बाबा ने उनको गले लगाकर प्रसाद दिया। तो जानी जानन हार जो बाबा का नाम है, जो महिमा है, वो प्रैक्टिकल में सिद्ध हुई कि कभी पत्र लिखा था बाबा ने कि प्रसाद मिला है तो तुम्हें कुछ मिला है, और जब साकार में बाबा से मिले पहली बार तो बाबा ने उसी दृष्टि से देते हुए कहा, बच्चे प्रसाद मिल गया। उसके बाद तो फिर लौकिक घर पर ही गीता पाठशाला बाबा ने शुरू कराई और वहां पर ही क्लास कोर्स चलने शुरू हो गए। बाबा से मुरली की बात जब कही तो अभी तो बहुत सारे जोन बन गए हैं, बहुत सारे यहाँ व्यवस्थाओं को सही रखने के लिए नियम कायदे कानून बन गए हैं। उस समय तो डायरेक्ट बाबा ने जैसे ही मुरली की बात कही कि बाबा गीता पाठशाला घर में हो गई है और मुरली चाहिए, तो बाबा ने यहां से मोहर बना करके डायरेक्ट लौकिक घर पर मुरली भेजना शुरू कर दिया। और ऐसे वहाँ पर आज भी गीता पाठशाला चल रही है। और हम दोनों भाई बहने मधुबन में, राजू भाई जो मुरली डिपार्टमेंट में सेवाएं देते हैं, वो मेरे लौकिक छोटे भाई हैं, वो यहाँ दे रहे हैं सेवाएं, और मैं यूपी में कासगंज में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।